अगली सूरत मुनाफिकून। जैसे कि तारुफ में आपको बता दिया, ना सिर्फ इसका नाम बल्कि इसका पूरा पैगाम भी निफाक है। 11 आयतें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा जाअकल मुनाफिकून, तेरे पास जब मुनाफिक आते हैं तो कहते हैं कि हम इस बात के गवाह हैं कि बेशक अब अल्लाह के रसूल हैं, यानी बातों से आपको खुश करते थे सिर्फ, और अल्लाह जानता है कि यकीनन आप अल्लाह के रसूल हैं, और अल्लाह गवाही देता है कि ये मुनाफिक कतई झूठे हैं, उन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना रखा है, बस अल्लाह की राह से रुक गए, बेशक बुरा है वो काम जो ये कर रहे हैं, यही सबब से है कि ये ईमान ला कर फिर काफिर हो गए, बस इनके दिलों पर मोहर कर दी गई। आप ये नहीं समझते, जब आप इन्हें देख लें तो इनके जिस्म आपको खुशनुमा मालूम हो, जब ये बातें करने लगें तो आप इनकी बातों पर अपने कान लगा दें, गोया कि ये लकड़ियां हैं और दीवार के सहारे लगाई हुई हैं, हर सख्त आवाज को अपने खिलाफ समझते हैं, यही हकीकी दुश्मन है, इनसे बचो। कातलहुमुल्लाह अन्ना युफकून, अल्लाह इन्हें गारत करे, कहाँ से फिरे जाते हैं। वैज़ा क़ील लहुम तआलौ, और जब इनसे कहा जाता है कि आओ तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल इस्तग़फ़ार करें, बोलिए अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन, तो अपने सर मटकाते हैं और आप देखेंगे कि वो तकबर करते हुए रुक जाते हैं। इनके हक में आपको इस्तग़फ़ार करना और ना करना दोनों बराबर है, अल्लाह ताला इन्हें हरगिज़ न बख्शेगा, बेशक अल्लाह ताला ऐसे नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं देता। हुमुल्लज़ीना यकूलून ला तुन्फिकू अला मन इंद रसूलिल्लाह, देखिए उनको बड़ा गिला था कि नबी सल्लम और उनके साथी को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं लोग, क्यों इनके कदम इधर जमा रहे हैं, तो क्या कहते हैं, यही वो हैं जो कहते हैं कि जो लोग रसूलुल्लाह के पास है इन पर कुछ खर्च ना करो, यहाँ तक कि वो इधर उधर हो जाए, यानी सरवाइव भी ना कर सके और मदीना छोड़कर वापस चले जाए मक्का, फिर क्या होगा, इनको बता दो और आसमान और जमीन के खजाने अल्लाह ताला की मलकियत है, लेकिन ये मुनाफिक बेसमझ है। पता चला कि मुनाफिक को अल्लाह के रास्ते में कुछ खर्च करना बहुत मुश्किल लगता है, 100 दफा सोचता है, बच्चे को एक पिज्जा खिलाना हो तो एक दफा भी नहीं सोचना, आइसक्रीम मांग ले तो खुद पूछते हैं बेटा आइसक्रीम खाओगे, उनका एक एक जोड़ा कई कई 100 का ले आता है, जहाँ दीन की बात आती है तो प्लस माइनस पे आता है, तो ऐसा बंदा सोच ले कि वो आसमान और जमीन का मालिक सोने के पार जमीन में रखने वाला ऊपर ले आए, उसको अपने दीन के काम कराने को मुश्किल है, लेकिन वो हमें मौका देता है, हमारा दिल देख रहा होता है, लेकिन निफाक के साथ ये बात समझ नहीं आती। वो कहते हैं अगर हम अब लौट कर मदीने जाएंगे, यहाँ नोट करिए अब्दुल्ला बिन उबई का जुमला है जो शुरू में आपको बता दिया था, यकूलून अलै रजान इलल मदीना, ये कहते हैं कि अगर हम अब लौट कर मदीने जाएंगे तो इज्जत वाला वहां से जिल्लत वाले को निकाल देगा, सुनो इज्जत तो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए और उसके रसूल के लिए और ईमानदारों के लिए है। वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यालमून, लेकिन मुनाफिक ये नहीं जानते। आज हम क्या कहते हैं, इज्जत किस में, अच्छी गाड़ी हो तो इज्जत होती है, अच्छा घर हो, अच्छे कपड़े हो, अच्छा खाना खिलाए मेहमानों को तो इज्जत है, नहीं, इज्जत सिर्फ अल्लाह के काम में है, याद रखिएगा अल्लाह ही के पास है, वो फिर उनको दे देता है जो उसके रास्ते में निकलते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, ए मुसलमानों तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दें, और जो कोई ऐसा करेंगे वो बड़े नुकसान पाने वाले हैं, माल और औलाद ये मुस्तकिल रोग रहा इंसानों का, इन्हीं की वजह से इंसान अल्लाह के रास्ते में निकलते निकलते रुक जाता है और देते देते रुक जाता है, देख लो भी बड़ी जिम्मेदारियां पड़ी हैं, अभी ये है वो है, तो अल्लाह ताला आपको मुझे एक पैगाम दे रहा है, बिल्कुल दिल से सुनने वाली आयत है, वन फिकु मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत, मौत दिलाई जा रही है, और जो कुछ हमने तुम्हें दे रखा है इसमें से हमारी राह में इससे पहले खर्च करो कि तुम में से किसी को मौत आ जाए, तो कहने लगे मेरे परवरदिगार मुझे तो थोड़ी देर की मोहलत क्यों नहीं देता, क्यों भाई, अब क्या चाहिए, फसद्दक़वकुम मिन सालिहीन, दो ख्वाहिशें होती हैं दुनिया से जाते हुए, क्या माल बहुत रखा हुआ था, जरा सदका करो, और दूसरा नेक लोगों में से हो जाओ, टाल ही रहा था नेक दोस्तों को सहेलियों को टाल ही रही थी, अच्छी महफिलों को टालती रही, अब एक दफा जरा मौका मिले तो मैं उन नेक लोगों के साथ बैठ जाऊं, जवाब सुन लीजिए, वले युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, और जब किसी का मुकर्रर वक्त आ जाता है तो फिर इसे अल्लाह ताला हरगिज़ मोहलत नहीं देता, और जो कुछ तुम करते हो इसे अल्लाह ताला बखूबी बाखबर है। तो मौत की सूरत में एक हिजरत तो करनी ही पड़ेगी, सब छोड़ के चले जाएंगे, कुछ साथ नहीं जाएगा। तदब्बुर और अमल अपने लिए और दूसरे मोमिनों और मोमिनात के लिए इस्तग़फ़ार कीजिए। किसी मुस्तहिक़ दाई या तालिबे इल्म के तालीमी अखराजात उठाने में उसकी मदद करें। लोगों की बनावटी बातें और ज़ाहरी वदाकत इनसे मुतासिर ना हो। रहनुमाई किसी ज़ाती फ़ायदे के लिए दीन का नुकसान नहीं करना। माल और औलाद अल्लाह से दूरी का सबब भी बन सकते हैं और क़ुर्बत का भी। फैसला आपके मेरे हाथ में। लोगों से वक्ती इज्जत और मर्तबे पाने के लिए हक का साथ नहीं छोड़ना। गौर व फिक्र की बातें। लोग इज्जत बादशाहों के दरबारों में तलब करते हैं, जबकि इज्जत सिर्फ अल्लाह ताला की फरमा बरदारी में है। सोचिए, हमेशा अल्लाह का जिक्र करना इसकी दायमी मोहब्बत का बायस है। दिल के लिए अल्लाह का जिक्र वैसे ही है जैसे खेती के लिए पानी। माल और औलाद अल्लाह के जिक्र से गाफिल करने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि इंसान माल को कमाने, बढ़ाने और इसे जमा करने में लगा रहता है। हर कोताह शख्स मौत के वक्त नादिम होगा और दराजिए उम्र का सवाल करेगा कि नेक आमाल कर ले, इसलिए आज ही जिंदगी की मोहलत से फायदा उठाएंगे। अल्लाह हमें तौफीक दे। कितना सिंपल मैसेज है ना कुरान का, समझने लगे तो बहुत आराम से समझ आ जाए, और ना समझना चाहें तो बिल्कुल भी समझ ना आए। आगे जी सूरत तगाबन, बस इसके साथ तो एक लफ्ज लिख लें, गबन हो गया। हदीस में आता है कुछ लोगों की नेकियां कयामत के दिन उनकी औलादें खा जाएंगी। गबन केस का लफ्ज आपने पाकिस्तान में कई बार सुना होगा, फलां अफसर गबन केस में पकड़ा गया, धोखा, इधर मैनिपुलेट करना, चीज को इधर से उधर कुरक कर लेना। कुछ कयामत का दिन भी ऐसा ही दिख रहा है। कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, युसब्बिहुलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। बोलिए, सुभानल्लाहि व बिहम्दिही सुभानल्लाहिल अज़ीम। तमाम चीज़ें जो आसमान और ज़मीन में अल्लाह ताला की पाकी बयान करती हैं, इसी की सल्तनत है और इसी की तारीफ है, और वो हर हर चीज़ में कादिर है। इसी ने तुम्हें पैदा किया है, सो तुम में से बास तो काफिर हैं और बाज़ ईमानदार हैं, और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह ताला उसको खूब देख रहा है। इसी ने आसमानों को और ज़मीन को अदल और हिकमत से पैदा किया, इसी ने तुम्हारी सूरतें बनाई और बहुत अच्छी बनाई, और इसी की तरफ लौटना है। वो आसमान और ज़मीन की हर हर चीज़ का इल्म रखता है, और जो कुछ तुम छुपाओ और जाहिर करो वो सब को जानता है। वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। अल्लाह ताला तो सीनों की बातों तक को जानने वाला है। क्या तुम्हारे पास इससे पहले के कुफार की खबर नहीं पहुंची, जिन्होंने अपने आमाल का बवाल चख लिया और जिनके लिए दर्दनाक अजाब है? ये इसलिए लिए कि इनके पास इनके रसूल वाज़े दलाइल लेकर आए तो उन्होंने कह दिया कि क्या इंसान हमारी रहनुमाई करेगा, यानी वही बशर और नूर वाला झगड़ा। बस इनकार कर दिया और मुंह फेर लिया, और अल्लाह ताला ने भी बेनियाजी की, और अल्लाह तो है ही बेनियाज सब खूबियों वाला। इन कुफार ने ख्याल किया कि दोबारा जिंदा न किए जाएंगे। आप कह दीजिए क्यों नहीं, अल्लाह की कसम तुम जरूर दोबारा उठाए जाओगे, फिर जो तुमने किया इसकी खबर दिए जाओगे, और अल्लाह पर ये बिल्कुल आसान है। फामिनु बिल्लाहि व रसूलिही, बस तुम अल्लाह पर और इसके रसूल पर और इस नूर पर जिसे हमने नाजिल फरमाया, कौन सा? कुरान का नूर, हदीस का नूर, ईमान लाओ, और अल्लाह ताला तुम्हारे हर अमल पर बाखबर है। जिस दिन तुम सबको इस जमा होने के दिन जमा करेगा, वो यही दिन है हार जीत का। और जो शख्स अल्लाह पर ईमान ला कर नेक अमल करे, अल्लाह इसे इसकी बुराइयां दूर कर देगा और इसे जन्नतों में दाखिल करेगा, जिसके नीचे नहरें बह रही हैं जिनमें वो हमेशा रहेंगे। यही है बहुत बड़ी कामयाबी, जालिकल फौजुल अजीम। क्या इस कामयाबी को लेने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा? देखिए, लफ्ज़ हार और जीत में बड़ी कशिश है। हर बंदा जीतना चाहता है, हारना कोई नहीं चाहता। जैसे इंट्रोडक्शन में दिया था, कयामत के दिन कुछ लोग खुद को जन्नती समझ रहे होंगे और उधर से निकाल कर उनको जहन्नमियों के सफ में खड़ा कर दिया जाएगा। और इसी तरह आप बनाए घर मेहनत से, कमाई से, और उस पर आकर कोई अपने नाम की प्लेट लगा दे। आप कहें दो घर, एक जन्नत में एक जहन्नम में, और आपको जन्नत के घर की बजाय जहन्नम के घर में भेज दिया जाए, कैसा लगेगा? और ऑपोजिट भी है कि जहन्नम का घर खाली रहे और आप जन्नत में चले जाएं, इस शऊर से जीने की जरूरत है। करो क्या, ये सारा नुस्खा देकर अल्लाह ताला ने कहा जालिकल फौजुल अजीम, इसके बरक्स वल्लजीना कफरू वकज्जबू भी आयातिना, और जिन लोगों ने कुफर किया और हमारी आयतों को झुटलाया वही सब जहन्नमी है, जो जहन्नम में हमेशा रहेंगे वो बहुत बुरा ठिकाना है। इस पे सलास हो रहा है। आयतन बोलिए अल्हम्दुलिल्लाहि अला नेमतिल कुरान। अगर अल्लाह ने कुरान में ये सब ना बताया होता और अचानक ये सब कल हो जाता तो हम क्या करते हैं? अचानक चोट भी बहुत लगती है ना। पेपर था केमिस्ट्री का और पेपर आपको फिजिक्स का दिया जाएगा, तैयारी की है नहीं की, तुम्हें देना पड़ेगा आज। इन मिसालों से सोचिए। अब आगे तकदीर से मुतल्लिक बहुत ही खूबसूरत आयत है, मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, कोई मुसीबत अल्लाह की इजाजत के बगैर नहीं पहुंच सकती। वो मैं यो में बिल्ला ही यख्ती कल्बा, जो अल्लाह पर ईमान लाए अल्लाह इसके दिल को हिदायत दे देता है। बहुत अहम बात है, अल्लाह पर ईमान बढ़ाते जाए अल्लाह खुद ही आपको सुझाने लग जाएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं, और अल्लाह ताला हर चीज को खूब जानने वाला है। वतीउल्लाह वतीउर्रसूल, बोलिए अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन। लोगो अल्लाह का कहना मानो, रसूल का कहना मानो, बस अगर तुम एराज करो तो हमारे रसूल के जिम्मे सिर्फ साफ साफ पहुंचा देना है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, और मोमिनों को अल्लाह ही पर तवक्कुल रखना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना मिन अज़्वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वुल लकुम, जरा से इससे रुकिए। ऐ ईमान वालो, तुम्हारी बास बीवियां और बास बच्चे तुम्हारे दुश्मन है, कौन से? सारे। इन्ना क्यों कर मिन क्यों कर, तो लिखिए वो औलादे और वो स्पाउसे जो दीन से रोकें, जो दीन को कमजोर करें, वो बीवियां जो हराम कमाने पे माइल करें, और वो शौहर जो बेनकाब कर दें, बेहिजाब कर दें, गलत चीजों पे ले जाएं, वो तो वाकई दुश्मन है। अच्छा दुश्मन है, एकदम गुस्सा आता है तो क्या करो? मारो, घर छोड़ दो, तलाक ले लो, इनके खिलाफ बातें करो, क्राइसिस सेंटर में चले जाओ, जरा सब्र करो, बल्कि आप जरा उंगलियों पे गिनिएगा। क्या करो? फ़ज़रूहुम व इन ताफू व तस्फहू व तग़फिरू, चार लफ्ज हैं डिक्शनरी में माफ करने और दरगुजर करने के लिए, चारों इसे एक आयत में जमा हो गए। कैसे? क्या करो ऐसे शौहर बीवी और बच्चों को? बस इनसे होशियार रहना, यानी बी केयरफुल बी वॉचफुल। तुम्हें बीवी होने के नाते समझदार होना चाहिए कि शौहर की कौन सी बात मानने वाली है कौन सी नहीं, और शौहर होने के नाते तुम्हें तो बहुत ही कयस होना चाहिए कि बीवी की हर बात मानने वाली नहीं होती। और अगर तुम माफ कर दो और दरगुजर कर दो और बख्श दो तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है, क्योंकि इन्ना अमवालुकुम औलादुकुम फितना, तुम्हारे माल और औलाद तो सरासर तुम्हारी आजमाइश है, और बहुत बड़ा अजर अल्लाह के पास है। देखिए हर नेमत इम्तिहान का पर्चा, आपका हर बच्चा इम्तिहान का पर्चा, आपके शौहर इम्तिहान का पर्चा, आपकी बीवी इम्तिहान का पर्चा। जैसा जैसा फील कर रहे हैं कल वहां ऐसे ही नंबर आएंगे। फत्तकुल्लाह मस्तता, तुम अल्लाह ने आपके दिल की सुन ली, क्या करूं पूरी कोशिश करती हूँ फिर नहीं मानते, तो कहा बस जहां तक तुमसे हो सके अल्लाह से डरते रहो और सुनते और मानते चले जाओ, और अल्लाह की राह में खैरात करते रहो जो तुम्हारे लिए बेहतर है, और जो शख्स अपने नफ्स की हिर्स से महफूज रखा जाए वही कामयाब है। अगर तुम अल्लाह को अच्छा कर्ज दोगे यानी इसकी राह में खर्च करोगे तो वो इसे तुम्हारे लिए बढ़ाता जाएगा और तुम्हारे गुनाह भी माफ फरमा देगा, क्योंकि वल्लाहु शकूरुन हलीम, अल्लाह बड़ा कदरदान और बड़ा बुर्दबार है। आलिमुल गैबी वश्शहादा, पोशीदा और जाहिर का जानने वाला, जबरदस्त हिकमत वाला है। सुभान, किसको ये किताब लगती है और किसको ये डायलॉग लगता है? ऐसे नहीं लगता हम बातें कर रहे हैं, कोई वन साइडेड बातें तो नहीं है कुरान में, कोई बोझल है काम तो नहीं? कभी अपने लॉ की बुक पढ़ी, इंतहाई बोझल, एक फिक नहीं समझ आती ये क्या लिखा है फलानी फलानी। मेडिकल की बुक पढ़ ले, बोरिंग, कुरान में सब कुछ लेकिन दिल सोजी, दिल की नरमी, कवानीन भी हैं तो इतने प्यारे अंदाज में दिए गए कि खुद ही मानने को दिल करे। आइए देखें तदब्बुर और अमल। ये दुआ मांगिए, अल्लाहुम्मा कमा हसन तखल्की फहसिन खुलुकी, अल्लाह जैसे तूने मेरी शक्ल अच्छी बनाई मेरा किरदार भी अच्छा बना दे। अल्लाह ताला से दुआ करें कि आपके हर दिन को पहले से बेहतर और अफजल बनाए, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया वो तबाह हो गया जिसका आज उसके कल से बेहतर ना हुआ। माल के फितने से महफूज रहने के लिए अपने माल का सदका निकालते रहिए। कुरान से रहनुमाई, अल्लाह की कज़ा व कदर पर पुख्ता ईमान रखें और इस पर राजी रहें। यौम तगाबुन, क़यामत का दूसरा नाम, क्योंकि उस दिन कुछ लोग फ़ायदे में होंगे और कुछ नुकसान में। मुसीबत वाक़ होने पर ईमान दिल को मजबूत कर देता है, यानी मुश्किलात में, आजमाइशों में अपने दिल को चेक किया करें। मुतमईन है, पुरसकून है, तो ईमान की अलामत है। और अगर बेचैन है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, हाय मुझे अब दुनिया में नहीं जीना, मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, तो फिर ईमान बढ़ाइए, ठीक हो जाएंगे आप इंशाल्लाह कुरान पढ़ने के दौरान। गौर व फिक्र के गोशे हर मखलूक की हम सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है, क्योंकि इसकी तमाम मखलूक को खैर उसी से हासिल होती है। हर अक्लमंद साहिब बसीरत पर वाजिब है कि वो अपने बातिन को बुरे अखलाक से महफूज रखने का हरीस हो और अच्छे अखलाक से मुत्तसिफ हो। मुसीबतों में अल्लाह की रजा पर राजी रहने वाले के दिल को अल्लाह हिदायत और सुकून और इत्मीनान से नवाजता है। ईमान बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाने का तकाजा है कि तवक्कुल किया जाए। तवक्कुल की कुव्वत और कमजोरी ईमान की कुव्वत और कमजोरी पर मुनहसिर है, और अल्लाह ताला हमें तवक्कुल भी दे और ईमान भी दे। आगे सूरत अल्लाह इसमें भी कुछ तवक्कुल की और इस्तगफार की बातें होंगी, और जैसा कि बताया गया निसाए सुगरा पूरा तलाक और उसकी इद्दत का तरीक़ाकार इसमें आपको दिखेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहन्नबी इज़ा तल्लक्तुमुन्निसा, ऐ नबी अपनी उम्मत से कहो कि जब तुम अपनी बीवियों को तलाक देना चाहो तो इनकी इद्दत के दिनों के आगाज़ में इन्हें तलाक दो और इद्दत का हिसाब रखो, यानी एक ख़ास टाइम पीरियड पे तलाक दी जाएगी जबकि शौहर ने बीवी से कोई ताल्लुक भी उससे पहले कायम ना किया हो उस मंथली साइकिल के दौरान। और इद्दत का हिसाब रखो, यानी मुराद है कि इद्दत साथ साथ चलती है, तलाक और इद्दत साथ साथ रहती है। और अल्लाह से जो तुम्हारा परवरदिगार है डरते रहो, ना तुम इन्हें इनके घरों से निकाल लो और ना वो खुद निकले। हाँ ये और बात है कि वो खुली बुराई कर बैठे हैं, ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदें हैं। जो शख्स अल्लाह की हदों से आगे बढ़ जाए, इसने यकीनन अपने ऊपर जुल्म किया। क्या तुम नहीं जानते शायद इसके बाद अल्लाह ताला कोई नई बात पैदा कर दे। यानी इद्दत के दौरान औरत शौहर के घर में रहेगी, आराइश करेगी, ज़िबाइश करेगी, उसका दिल मोहेगी। किसी वक्त भी शौहर का दिल रीझ जाए तो वो रुजू कर लेगा और बीवी इनकार नहीं करेगी। ये है मकसद इद्दत का। हमारे यहाँ इद्दत कहाँ गुजरती है? अब्बा के घर। इद्दत तो बाद की बात है, अभी झगड़ा होता है तो बेटी को ले जाते हैं। सारा दीन गिरा दिया हमने, ना हमें शादी करना आता है ना तलाक देना आता है। शादी इंडियन मूवीज से सीखी और तलाक देना हमने पंजाबी फिल्मों से सीखा। तलाक है, शोर मचेगा, आवाज़ आएगी, बिजली चमकेगी और एकदम औरत को बाहर खड़ा करके कह देंगे जाओ भी, अब तुम गैर महरम हो तो मेरे घर में नहीं रह सकती। आपका दिल मानता है ये तलाक का तरीका ठीक है जो आज हमारे इंडो पाक में? इस्लाम मुर्गी को भी ज़िबा करता है तो कहता है थोड़ा सा कट लगा के छोड़ दो, एक झटके में तो गर्दन भी कट गई तो खा नहीं सकते। तो क्या एक औरत जो आज मिसिस थी, फलां थी, बेगम थी, रानी थी, घर में चाबी, और मर्द एक लफ्ज बोल दे क्योंकि खाने में नमक तेज हो गया, या बीवी ने कुछ कह दिया और मर्द को गुस्सा आ गया और घर में रह नहीं सकते क्योंकि नेक पारसा बहुत है और गैर महरम साथ नहीं रहते, चलो बेगम तुम जाओ बाहर, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, कोई पुलिस आएगी, कोई आएगी, ऐसी कोई कमेटी तुम्हें ले जाएगी, मैं तुम्हें साथ नहीं रख सकता। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हमने खुद मजाक बनाया अपने दीन का। आज उम्मत मुस्लिमा के पास सबसे स्ट्रांग चीज़ उसका फैमिली सेटअप है और ये टूटता जा रहा है दिन ब दिन। मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की तलाक का ऑलमोस्ट सेम रेशियो हो गया वेस्ट में, क्योंकि क्राइसिस सेंटर भरे पड़े हैं मुसलमान औरतों से। कहती हैं मियाँ तो अच्छा नहीं रखता, वहाँ जाते हैं गवर्नमेंट घर दे देगी हमें। मियाँ से तलाकें जान के ले रही हैं कि अब गवर्नमेंट से झूठे फायदे ले। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसको मुसलमान कहते हैं, पैसे का पीर कहते हैं इसको, फायदों का हरीस कहते हैं। आप इस इस्लाम को जरा दुनिया को दिखाएं तो सही। लोगों ने इससे ले लेके पूरे पूरे अपने मुल्कों के निजाम बना लिए और हमारा हाल यह है कि जिनके पास हीरे मोती हैं वो उसको छुपा कर दूसरों के मोतियों और जरकोन से फायदा लेने की कोशिश करें। इद्दत का तो मकसद ही फौत हो जाता है अगर मियाँ बीवी अलग कर दिए जाते हैं। चलिए आगे क्या होगा, इद्दत के बाद या उसके करीब, फाइजा बलग ना जलहुन, बस जब ये औरतें अपनी इद्दत पूरी करने के करीब पहुंच जाएं, तो या तो इन्हें कायदे के मुताबिक अपने निकाह में रहने दो या दस्तूर के मुताबिक इन्हें अलग कर दो और आपस में से दो आदिल शख्सों को गवाह कर लो और अल्लाह की रजामंदी के लिए ठीक ठीक गवाही दो। यही है वो जिसकी नसीहत उसे की जाती है जो अल्लाह पर और क्यामत के दिन पर ईमान रखता हो, और जो शख्स अल्लाह से डरता है अल्लाह ताला उसके लिए छुटकारे की शक्ल निकालता है। इसको हाईलाइट करिए, फमैन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा। तकवा इतना मजबूत अंसर है कि मुश्किलात में से भी रास्ते निकाल देता है, वह यरजुक मिन हैसु ला यहतसिब, और इसे ऐसी जगह से रोजी देता है कि जिसका इसे गुमान भी ना हो, और जो अल्लाह पर तवक्कुल करेगा अल्लाह इसे काफी होगा। अल्लाह ताला अपना काम पूरा करके ही रहेगा। अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक अंदाज़ा मुकर्रर कर रखा है। आमतौर पे झूठ सच जिंदगी गुजारी जाती है, हराम ताल्लुक रहते हैं लेकिन तलाक नहीं लेते देते, क्यों? खाएंगे कहाँ से, घर कहाँ से बनेगा? तो अल्लाह ने यहाँ बिल्कुल तलाक के मौजू के दरमियान में रख दिया कि रोजी रोटी शौहर नहीं देता, रिस्क अल्लाह के हाथ में है, तुम अल्लाह के कानून को मानो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अब वो औरतें जो बूढ़ी उम्र पे पहुंच गईं, अब उनकी इद्दत कैसे काउंट होगी, क्योंकि 3 पीरियड्स तो आम औरत के लिए थे, अब बूढ़ी औरत मीनोपॉज में आ गई, और अगर तलाक की सूरत आए तो क्या हो? या छोटी बच्चियां जिनके अभी साइकिल शुरू ही नहीं हुए, तो फरमाए वल्ला यइसन मिनल महीद, तुम्हारी औरतों में से जो औरतें हैज से नाउमीद हो गई हों, अगर तुम्हें शुबा हो तो इनकी इद्दत 3 महीने है, और इनकी भी जिन्हें हैज आना शुरू ही ना हुआ हो, और हामिला औरतों की इद्दत इनका वजह हमल है यानी बच्चे के पैदा होने तक इद्दत होगी, चाहे 9 माह बाद पैदा हो चाहे दूसरे दिन पैदा हो जाए, औरत फारिग हो गई। और जो शख्स अल्लाह से डरेगा अल्लाह इसके हर काम में आसानी करेगा। सूरत तलाक में बार बार तकवा का जिक्र है। इंसानी मामलात में तकवा के बगैर बंदा सुरखरू हो ही नहीं सकता। ये अल्लाह का हुक्म है जो इसने तुम्हारी तरफ उतारा है, और जो शख्स अल्लाह से डरेगा अल्लाह इसके गुनाह मिटा देगा और इसे बड़ा भारी अजर देगा। गिनिएगा जरा इस सूरत में कितनी दफा लफ्ज तकवा आया है। अस्किनूहुन्न मिन हैसु सकन्तुम मिन वुजदिकुम, तुम अपनी ताकत के मुताबिक जहाँ तुम रहते हो वहाँ इन तलाक वाली औरतों को रखो, और इन्हें तंग करने के लिए तकलीफ ना पहुँचाओ, और अगर वो हमल से हों तो जब तक बच्चा पैदा हो ले इन्हें खर्च देते रहा करो, फिर अगर तुम्हारे कहने से वही दूध पिलाएं तो तुम इन्हें इनकी उजरत दे दो, और बाहम मुनासिब तौर पर मशवरा कर लिया करो, और अगर तुम आपस में कशमकश करो तो इनके कहने से कोई और दूध पिलाएगी। देखिए तलाक की जरूरत में अगर प्रेग्नेंट है तो क्या हकूक है औरत के, और अगर बच्चा हो जाता है और उस बच्चे के क्या हकूक है, इस्लाम तो ये तक सिखा रहा है हमको, और आज वेस्ट ने ऑलमोस्ट यही सारा कुछ ले लिया। औरत को इतना सिक्योर करते हैं बच्चे के पैदा होने पे और इन सारी चीजों पे, आज हमारे अपने कल्चर में देखिए क्या होता है, एक से दूसरी बेटी हो जाए पैदा तो औरत को जरा हल्का सा देखते हैं, क्या आप इसको दबाना बेटी पैदा की है, क्या इसको काढ़ा पिलाया जाए, अब ये कोई बेटा थोड़ी हुआ है जिसकी हम यखनियाँ पिलाकर इसकी खिदमत करें। इंसानियत भी अगर सामने हो ना तो उसको जो चीज़ सही लग रही होती है वो हर बंदे के लिए होती है, और गलत चीज़ सबके लिए गलत होती है। अब इस सारे खेल में अब औरत भी मर्द पे जुल्म ना करे, कैसे? लियुन्फिक़ु सआत मिन सआतिही वमन क़ुदिर अलैहि रिज़्क़ुहु फलयुन्फिक़ मिम्मा आताहु अल्लाह, कुशादगी वाले को अपनी कुशादगी से खर्च करना चाहिए, और जिस पर इसके रिस्क की तंगी की गई है उसे चाहिए कि जो कुछ अल्लाह ने उसे दे रखा है इसी में से अपनी हस्बे हैसियत दे। किसी शख्स को अल्लाह तकलीफ नहीं देता मगर इतनी ही जितनी उसे ताकत दे रखी हो। अल्लाह तंगी के बाद आसानी और फरागत भी देगा। यानी अब औरत भी नहीं ना खेल समझ ले कि बच्चे का खर्चा दो मुझे इतना दो कि जितनी तुम्हारी पूरे महीने की पे भी नहीं है, ये मर्द पे जुल्म होगा, और मर्द बिल्कुल नहीं दे रहा ये औरत पे जुल्म होगा। इस्लाम ही दुनिया को बदल दे सकता है, सुकून देगा अगर हम इसको समझ जाएं। अब आखिर में एक तबसरा है, वकाइये मिन करिया, और बहुत सी बस्ती वालों ने अपने रब के हुक्म से और इसके रसूलों से सरताबी की, तो हमने भी इनसे सख्त हिसाब किया और इन्हें अजाब दिया, अनदेखा सख्त अजाब, बस उन्होंने अपने करतूत का मजा चख लिया और अंजामे कार इनका खसारा ही हुआ। इनके लिए अल्लाह ताला ने सख्त अजाब तैयार कर रखा है, बस अल्लाह से डरो ऐ अक्लमंद ईमान वालो, यकीनन अल्लाह ताला ने तुम्हारी तरफ नसीहत उतार दी है। रसूलन जतलु अलैकुम आयातिल्लाह, यदि रसूल जो तुम्हें अल्लाह के साफ साफ अहकाम पढ़कर सुनाता है ताकि इन लोगों को जो ईमान लाए और नेक अमल करें और तारीकियों से रोशनी की तरफ ले आए और जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाए और नेक अमल करे, अल्लाह उसे ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें जारी हैं, जिनमें ये हमेशा हमेशा रहेंगे। बेशक अल्लाह ताला ने इसे बेहतरीन रोजी दे रखी है। 4-5 दफा यहाँ रोजी का तस्करा आया है सूरह तलाक में, क्योंकि हमारे इशू भी तो यही है ना, खाएंगे कहाँ से, पियेंगे कहाँ से। अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सब समावात, अल्लाह वो है जिसने 7 आसमान बनाए और उसी के मिसल ज़मीनें भी। इसका हुक्म इनके दरमियान उतरता है ताकि तुम जान लो कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है और अल्लाह ताला ने हर चीज़ को इल्म के एतबार से घेर रखा है। अल्लाह हमें इल्म लेने वाला बना दे। ला यालमुन ला यालमुन कुरान में बार बार आ रहा है। तदब्बुर और अमल के नुक्ते देखते हैं, जो अल्लाह से डरते हैं वही नसीहत कबूल करते हैं। रहमतें पाने के लिए नेक काम करने होंगे। सुबह शाम की दुआओं का पाबंदी से विर्त करें, क्योंकि वो अल्लाह पर तवक्कुल के असबाब में से है। अहकाम तलाक पर मुरतब होने वाली शरई मसलहतों और मकासद के बारे में गौर व फिक्र करें, और ख़ास तौर पर हमें एक औरत होने के नाते तो अल्लाह पे बहुत ही प्यार आना चाहिए। कमज़ोरों के साथ भलाई और मारूफ के साथ पेश आने की अहमियत को समझें। अल्लाह का तकवा रोजी के हसूल, गुनाहों को मिटाने और दर्जात की बुलंदी का सबब है। तो दुआ कर लें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वलफाफा वलगिना। गौर व फिक्र, अल्लाह का तकवा अख्तियार ना करने वाला शख्स मुसीबतों और परेशानियों में मुबतला हो जाता है। यजअल लहू मखरजा, क्या है मखरज, क्या है इधर मखरज? यह है कि अल्लाह दुनिया और आखिरत की हर मुसीबत से निजात दे देता है और जन्नत की तरफ रास्ता आसान कर देता है। अल्लाह के बताए हुए तरीकों से ज़िंदगी गुजारनी है, जो ऐसा नहीं करता वो दुनिया में भी तंगी में रहता है। कहाँ पढ़ा था आपने कुरान में? वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका, याद है सूरत, सूरत तौहा 16वां पारा था। आगे देखते हैं जी, आखिरी सूरत अल्हम्दुलिल्लाह पारा तकमील की तरफ है। 12 आयते हैं सिर्फ, लेकिन इसमें नबी की निजी ज़िंदगी, प्रॉफिट एट होम, अखलाक के नबी, अल्लाह के नबी का अपनी अजवाज के साथ क्या ताल्लुक था आपके अखलाक से दिखता है। आइए ज़रा सुनते हैं सूरह तहरीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तबतगी मर्दात अज़्वाजिक वल्लाहु गफूरुर रहीम। कितना इतराज़ कर रहा है अल्लाह ताला डायरेक्ट नबी पर, सुभान अल्लाह। ए नबी, जिस चीज़ को अल्लाह ने आपके लिए हलाल कर दिए, इसे आप क्यों हराम करते हैं? क्या आप अपनी बीवियों की रजामंदी हासिल करना चाहते हैं? और अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। तहकीक, अल्लाह ने तुम्हारे लिए कस्मों को खोल डालना मुकर्रर कर दिया है, और अल्लाह तुम्हारा कारसाज़ है और वही पूरे इल्म वाला हिकमत वाला, यानी जो कसम खाई है उसका कफारा दे के कसम तोड़ दीजिए। वही नबी, और याद करो जबकि नबी ने अपनी बाज़ औरतों से एक पोशीदा बात कही, पर जब इसने इस बात की खबर कर दी और अल्लाह ने अपने नबी को इस पर आगाह कर दिया, तो नबी ने थोड़ी सी बात तो बता दी और थोड़ी सी बात टाल गए। फिर जब नबी ने अपनी इस बीवी को ये बात बताई तो वो कहने लगी, इसकी खबर आपको किसने दी? कहा, सब जानने वाले पूरी खबर रखने वाले अल्लाह ने। आज हम औरतें भी कहती हैं, आपको किसने बताया? अच्छा, अम्मा ने बताया होगा। तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। इन ततुबा इल्लाह, ए नबी की दोनों बीवियों, देखिए तस्निया का सीगा है ड्यूल, अगर तुम दोनों अल्लाह के सामने तौबा कर लो तो बहुत बेहतर है, यकीनन तुम्हारे दिल झुक पड़े हैं। और अगर तुम नबी के खिलाफ एक दूसरे की मदद करोगी, पस यकीनन इसका कारसाज अल्लाह है और जिब्राइल हर नेक ईमानदार, और इनके अलावा फरिश्ते भी मदद करने वाले हैं। असा रब्बुहु इन तल्लक़कुन, अगर वो पैगंबर तुम्हें तलाक दे दे तो बहुत जल्दी ने इनका रब तुम्हारे बदले तुमसे बेहतर बीवियां अनायत फरमाएगा। जो इस्लाम वालियां, ईमान वालियां, अल्लाह के हजूर झुकने वालियां, तौबा करने वालियां, इबादत बजा लाने वालियां, रोजा रखने वालियां, बेवा और कुंवारियां होंगी। आज आप बेटे का रिश्ता ढूंढने जाए, ये क्राइटेरिया है कि बेटा ऐसी लड़की ढूंढूंगी तुम्हारे लिए, आगे से जवाब क्या मिलेगा? अम्मा बीवी लेनी है मैंने या कोई टीचर लेनी है? यानी आज हमारा रिश्तों का तस्वुर ही घूम गया, गोरी चिट्टी लंबी डॉक्टर फलां फलां फलां। नस्लें कैसे परवान चढ़ेंगी? सब लीजिए, कोई खर्च नहीं, लेकिन सबसे ऊपर टॉप मोस्ट दीन, दीन के साथ जो मिल जाए, एक्स्ट्राज हैं, पैकेज है, ले लीजिए, डील मिल रही है, ऑफर मिल रही है। और अगर दीन छोड़कर ये सारा कुछ मिलता है तो आपका हाल पता है क्या, कि मेन मील छोड़ के साइड की चीजें लेकर खुश हो रहे हैं। अगली आयत, यूनिक आयत, वाहिद मुकाम कुरान का जहां ईमान वालों को आग से बचने का हुक्म है। ये जो हमारे गुमान में ना कि काफिरों ने आग में जाना है, मुसलमानों ने नहीं जाना, या वो जा कैसे सकते हैं क्योंकि वो नबी के उम्मती हैं, वो मुसलमान है, तो जरा सा इस आयत पे गौर कीजिएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारो, ऐ ईमान वालों तुम अपने आप और अपने घर वालों को इस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान है और पत्थर। अलैहा मलाइकतुन गिलासुन शिदाद, जिस पर सख्त दिल मजबूत फरिश्ते मुकर्रर हैं। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, जिन्हें जो हुक्म अल्लाह ताला देता है इसकी नाफरमानी नहीं करते। व यफलून मा युमरून, बल्कि जो हुक्म दिया जाता है इसे बजा लाते हैं। पहले तो दुआ कीजिए जो फरिश्तों की खूबी है अल्लाह हमारी भी वही खूबी बना दे। या अय्युल्लज़ीना कफरू ला तअतज़िरुल यौम इन्नमा तुज़ज़ूना मा कुंतुम तअमलून, ऐ काफिरों आज तुम उजर बहाने मत करो, तुम्हें सिर्फ तुम्हारे करतूतों का बदला दिया जा रहा है। यानी उस दिन तुम्हारे साथ जो होना है वो तो होके रहेगा। या अय्युल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसुहा, अब पारे का भी एंड है, ऑलमोस्ट कुरान भी तकमील पे है। इतना कुछ सुन लिया, पता नहीं कितनी खामियां अपनी लिखी होंगी, कितनी कमियां बेशियां, क्या करो, तौबे नसुहा कर लो। ऐ लोगो जो ईमान लायक हो, तुम अल्लाह के सामने सच्ची खालिस तौबा करो, करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हारे गुनाह दूर कर दे और तुम्हें ऐसी जन्नतों में दाखिल करे जिनके नीचे नहरें जारी हैं। जिस दिन अल्लाह ताला नबी को और ईमानदारों को जो इनके साथ है रुसवा न करेगा, इनका नूर इनके सामने और इनकी दाई जानिब दौड़ रहा होगा। सामने क्या, क्योंकि भाग भाग के नेकियां करते थे। दाई तरफ क्यों, क्योंकि नेकियों का नूर था इनकी। बाई का जिक्र ही नहीं, क्योंकि बाया हाथ आमतौर पे नेगेटिव चीज के लिए आता है। ये दुआएं करते होंगे क्या, रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फिर लना इन्नका अला कुल्ली शयइन क़दीर, ए हमारे रब हमें कामिल नूर अता फरमा और हमें बख्श दे, यकीनन तो हर चीज पर कादिर है। वहां जाकर जो भीख मांगेंगे नूर की, तो दुनिया में कुरान का नूर ले लें, जो दुनिया में कुरान के नूर के साथ चलेगा वो इंशाल्लाह वहां भी रोशनियों में रहेगा। या अय्युहन नबी युजाहिदिल कुफार वल मुनाफिकीन वग़ल्ज़ अलैहिम वमा वाहुम जहन्नम वबिसल मसीर, ए नबी कुफार और मुनाफिकों से जिहाद करो और इन पर सख्ती करो, इनका ठिकाना जहन्नम है जो बहुत बुरी जगह है। आगे चार औरतों की मिसाल है, जरा समझ लीजिए, दो अच्छी और दो बुरी। कैसे, दरब अल्लाहु मसलल्लज़ीना कफरू, अल्लाह ताला ने कुफार के लिए नूह की और लूत की बीवी की मिसाल बयान फरमाई। ये दोनों हमारे बंदों में दो शाइस्ता और नेक बंदों के घरों में थी, फिर उन्होंने इनकी खयानत की, यानी उस मिशन की राह ही नहीं थी। बस वो दोनों नेक बंदे इनसे अल्लाह के किसी अजाब को ना रोक सके और हुक्म दिया, दोजख में जाने वालों के साथ तुम दोनों भी चली जाओ। क्या पता चला कि जहां अमल साथ छोड़ दे वहां नसब काम नहीं आएगा। शौहर अगर नेक है, अगर बीवी नेक नहीं, तो वो जन्नत में नहीं ले जाएंगे उसको, और इसका अपोजिट भी है। अब दो नेक औरतें, वदरब अल्लाहु मसलल्लज़ीना आमनू, और अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए फिरौन की बीवी की मिसाल बयान फरमाई, जबकि इसने दुआ की क्या। अब इस दुआ को अपने लिए नोट कर लीजिए, रब इब्न ली इंदक बैतन फिल जन्ना, ऐ मेरे रब मेरे लिए अपने पास जन्नत में मकान बना और मुझे फिरौन से और इसके अमल से बचा और मुझे जालिम लोगों से खुलासी दे दे। फर्स्ट लेडी, क्वीन, किंग की बीवी, अपने वक्त का जाबिर सुल्तान भी और दौलतमंद भी, लेकिन उसको उन महल्लात में चैन नहीं आया क्योंकि वहाँ नाफरमानी के काम थे। अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने उस औरत की दुआ कबूल कर ली, दुनिया से जाने से पहले उसको जन्नत में अपना मुकाम दिखा दिया। इसके बरस अब एक कुंवारी औरत व मरियम, और मिसाल बयान फरमाई मरियम बिन्नत इमरान की, जिसने अपनी नामोश यानी इज्जत की हिफाजत की, फिर हमने अपनी तरफ से इसमें जान फूंक दी, और इस यानी मरियम ने अपने रब की बातों और इसकी किताबों की तस्दीक की और इबादत गुजारों में से थी। यानी मैरिड औरतों के लिए हजरत आसिया रोल मॉडल है और अनमैरिड औरतों के लिए हजरत मरियम। तदब्बुर और अमल, अपने अहले खाना को नसीहत करें जिससे आपका मकसद इनको जहन्नुम के अजाब से बचाना हो। अल्लाह से अपनी खालिस तौबा की कबूलियत की दुआ करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो आपके दिल को मुनव्वर कर दे और आपको बख्श दे रहनुमाई। किसी की सरजिश करते हुए इसके तमाम गुनाहों का जिक्र ना करें, ताकि वो नाउम्मीदी का शिकार ना हो जाए। अपने भाइयों की कुछ लग्जिशों को नज़रअंदाज करना आपके नेक खसलत होने की दलील है। सालेहीन से कुर्बत काम नहीं आएगी जब तक कि आप खुद नेक ना हो जाएं। गौर व फिक्र, अपने आप को और अहले खाना को आग से बचाएं, इनको खैर का हुक्म दें, बुराई से रोकें और तालीम और अदब सिखाएं। खालिस तौबा में चार चीज़ें लिख लें, जुबान से इस्तगफार, इस अमल को छोड़ देना, दोबारा ना करने का इरादा और बुरे साथियों की सोहबत को छोड़ देना, ये सब शामिल है। मसाइब पर परेशानियों के वक्त अल्लाह ताला से निजात की दुआ करना अंबिया की सुन्नत और नेकों की आदत है, इस आदत को अपनाना है। तो ये खूबसूरत सा पैगाम, इस पे पारा पूरा हुआ। आज की मतरूक सुन्नतों में से एक सुन्नत, तशहुद के बाद सलाम फेरने से पहले की दुआ। अबू बकर सिद्दीक ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूलुल्लाह, मुझे ऐसी दुआ सिखाइए जो मैं अपनी नमाज में मांगा करूं। आपने फरमाया, ये पढ़ा करो। ये कहाँ पढ़नी है? तशहुद में सलाम से पहले। क्या कहा? अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फिर ली मिन इंदिका मग़फिरतन इन्नका अंतल ग़फूरुर रहीम। ए अल्लाह, मैंने अपनी जान पर बहुत जुल्म किया और तेरे सिवा गुनाहों को और कोई बख्शता नहीं, बस मेरे गुनाह अपने पास से बख्श दे, बिलाशुबा तू बड़ा मगफरत वाला और रहम करने वाला है। अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।